नमस्कार भारत, तारीख 5 अक्टूबर, दिन गुरुवार। गिरती अर्थव्यवस्था और लगातार हो रही आलोचना से मोदी सरकार में चिंता। वित्त मंत्री अरुण जेटली के बाद खुद प्रधानमंत्री ने कहा, बेहतरी के लिए उठाएंगे हर कदम।
निवेश बढ़ाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाते रहे।
सुनेंगे एक बातचीत प्रोफेसर अरुण कुमार से मोदी के दावों की सच्चाई पर। और मध्य प्रदेश में पुलिस ने किसानों के कपड़े उतरवाए तो जयपुर में जमीन लिए जाने के खिलाफ किसानों ने खुद को जमीन में गाड़ा।
ये विकास के नाम पे नहीं ले रहा है जेडीए, केवल व्यवसाय करना चाहता है। 1000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है जेडीए को, इसलिए जेडीए हमें यहाँ से गुंडागर्दी करके निकालना चाहता है।
सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, विकास त्रिवेदी से। आर्थिक नीतियों पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा समेत विपक्ष की आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम विरोधियों पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा, कुछ लोगों को निराशा फैलाने की आदत होती है और ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। अब जब विकास को सही दिशा मिली है तो कुछ लोगों ने आंखों में पर्दा डाल लिया है। मैं यकीन दिलाता हूं कि सरकार द्वारा लिए कदम आने वाले सालों में देश को विकास की एक नई लीग में रखने वाले हैं। अमेरिका के लास वेगास में हुई गोलीबारी के बाद इस शहर के दौरे पर गए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घायलों से मुलाकात की। रविवार शाम स्टीफन पैडक नाम के हमलावर की गोलाबारी में 58 लोगों की मौत हुई थी और 500 लोग घायल हुए थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस मौके पर कहा, संयुक्त राज्य अमेरिका पीड़ितों के साथ खड़ा है। ट्रंप ने कहा कि रविवार रात दुनिया ने अमरीकी लोगों की जो बहादुरी देखी है उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। कैटलोनिया के राष्ट्रपति कार्लेस पुइगडेमोन ने स्पेन के किंग फिलिप की आलोचना की है। किंग फिलिप ने कैटलोनियों की आज़ादी के लिए हुए जनमत संग्रह को अवैध करार दिया था। ये जनमत संग्रह बीते हफ्ते हुआ था, जिसके बारे में कैटलोनिया प्रशासन ने दावा किया कि इसमें 90% लोगों ने स्पेन से अलग होने के पक्ष में वोट डाला। कार्लेस पुइगडेमोन ने कहा कि वक्त की मांग है कि इस मसले पर मध्यस्थता की जाए। स्पेन की सरकार ने कार्लेस की मांग को खारिज किया। स्पेन के प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी एक बयान में कहा गया, जब तक कार्लेस आज़ादी के लिए किए अवैध अभियान को नहीं रोकेंगे तब तक इस मसले पर कोई बात नहीं की जाएगी।
Per això el missatge que el cap de l'Estat va voler adreçar a una part de la població.
किंग फिलिप के दिए बयान से ज़्यादातर कैटलोनिया के लोग निराश हैं। किंग ने लाखों कैटलोनिया के लोगों की जानबूझकर अनदेखी की है। पुलिस की हिंसा में शिकार हुए लोगों को देखकर आधी दुनिया के लोग आज कैटलोनिया के साथ दिल से जुड़े हुए हैं। ये थे कैटलोनिया के राष्ट्रपति कार्लेस पुइगडेमोन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की सत्तारूढ़ कंजर्वेटिव पार्टी की सालाना बैठक में दिए भाषण के दौरान एक दिलचस्प वाक्य हुआ। थेरेसा भाषण देने के लिए जब मंच पर मौजूद थी तब एक कॉमेडियन ने इसमें बाधा डाली। थेरेसा भाषण दे रही थी तब हाथ में कागज़ लहराता एक कॉमेडियन मंच पर प्रधानमंत्री के पास गया और उसे थेरेसा को पकड़ाया। ये एक P45 फॉर्म था, जिसे ब्रिटेन में तब दिया जाता है जब कोई किसी कंपनी में काम करना बंद कर दे या वो उसकी नौकरी का आखिरी दिन हो। अमरीकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया है जिसमें उनके जुलाई महीने में इस्तीफे की बात कही जा रही थी। टिलरसन ने राष्ट्रपति ट्रंप का समर्थन करते हुए कहा, मेरी प्रतिबद्धता राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हमेशा की तरह मजबूत है और ये तब तक रहेगी जब तक इसकी ज़रूरत होगी। लेकिन ट्रंप को मंदबुद्धि कहने वाले अपने कथित बयान पर टिलरसन चुप रहे। टिलरसन ने कहा कि वो इस तरह की तुच्छ चीज़ों से नहीं निपटने जा रहे। राष्ट्रपति ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप ने भी इन मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी बताया। मैं रेक्स टिलरसन के बयान से बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। NBC ने जो रिपोर्ट दिखाई वो फर्जी थी, पूरी तरह से झूठी खबर। आप सभी लोगों का शुक्रिया, मुझे रेक्स पर पूरा यकीन है। ये थे अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शब्द। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने BBC से कहा है कि वो तालिबान के साथ एक सतत शांति समझौता करने की तरफ काम करना चाहते हैं और उनकी पूरी रणनीति इस बात पर है कि कैसे इस मसले पर राजनीतिक समाधान की ज़मीन तैयार की जाए। घानी ने कहा, मुझे यकीन है कि अगले 4 सालों में हालात पर काबू पा लिया जाएगा और पूरे मुल्क में सरकार के सुरक्षा बल तैनात होंगे। अर्जेंटीना, उरुग्वे और पराग ने साल 2030 में खेले जाने वाले फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी करने के लिए संयुक्त रूप से बोली लगाने का फैसला किया है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत बीबीसी रेडियो की पहली सभा आप सुन रहे हैं फैसल मोहम्मद अली से। तमाम सुनने वालों का स्वागत है। वादा था करोड़ों नई नौकरियों और भारतीय अर्थव्यवस्था को आकाश तक ले जाने की, लेकिन उसके उलट जीडीपी पिछले 3 सालों में सबसे नीचे स्तर पर है। नोटबंदी के सरकार के फैसले पर हर तरह से हमले जारी हैं और जीएसटी को लेकर व्यापारियों में भारी नाराजगी है। पिछले दिनों मोदी सरकार की नीतियों पर लगातार हो रही आलोचना के बीच अरुण जेटली के बाद कल खुद प्रधानमंत्री मोदी मैदान में आए और जनता को आश्वस्त करने की कोशिश की। सुनिए क्या कहा भारतीय प्रधानमंत्री ने।
पिछले दिनों सफाई देने के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली सामने आए थे, तो कल नरेंद्र मोदी ने मोर्चा संभाला। दिल्ली में कंपनी सेक्रेटरीज इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के गोल्डन जुबली कार्यक्रम में मोदी ने देश की आर्थिक हालत पर आलोचना करने वालों को खरी खोटी सुनाई। पिछली तिमाही में जीडीपी में आई गिरावट के बाद मोदी और उनकी सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। उन्होंने सवाल करने वालों पर तंज कसा।
कुछ नहीं होगा, कैसे करोगे, जब ये डोकलाम हुआ कुछ नहीं कर सकते हमारा। ऐसे लोगों को जब डाटा अनुकूल होता है तो उन्हें वो इंस्टीट्यूट भी अच्छी लगती है, वो प्रोसेस भी सही लगता है, लेकिन जैसे ये डाटा उनकी कल्पना के प्रतिकूल होता है तो ये कहते संस्थान ठीक नहीं है, प्रोसेस ठीक नहीं है।
जिस नोटबंदी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मील का पत्थर बताते हैं और जीएसटी जिसे देश का सबसे बड़ा कर सुधार बताते हैं, उसे लेकर न सिर्फ विपक्ष बल्कि पार्टी के नेता यशवंत सिन्हा, जो कि पूर्व वित्त मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने मोदी सरकार को जमकर लताड़ा था। पिछले दिनों उन्होंने एक अंग्रेजी अखबार में लेख लिखकर वित्त मंत्री अरुण जेटली पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तिमाही दर तिमाही ग्रोथ रेट धीमी पड़ रही है और नोटबंदी ने आग में घी डाला था। उन्होंने जीएसटी पर भी हमला बोला और कहा कि जीएसटी ने कईयों को डुबो दिया, रोजगार छीन लिए और नए मौके नहीं दिख रहे। लेकिन मोदी ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था का आधार मजबूत है।
देश की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को भी मेंटेन रखा जाएगा, निवेश बढ़ाने के और आर्थिक विकास को गति देने के लिए हम हर आवश्यक कदम उठाते रहे।
आर्थिक मोर्चे पर घिरी सरकार की सफाई दे रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न सिर्फ अपनी नीतियों की सफलता गिनाई बल्कि पिछली सरकार की असफलताएं भी गिना दी।
पिछली सरकार में 6 साल में 8 बार ऐसे मौके आए जब विकास दर 5.7% या उससे नीचे गिरी थी। भूलिए मत पुरानी बातों को, जब विकास दर 0.2% यहां तक गिरी थी। हमने रिफॉर्म से जुड़े हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं और ये प्रक्रिया लगातार जारी है।
हालांकि जीएसटी को लेकर हो रही दिक्कतों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बारे में समीक्षा की जानी चाहिए और जरूरत पड़ने पर सुधार भी किया जाना चाहिए।
ये थी हरिता कांडपाल। हमारे सहयोगी संदीप राय ने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से संपर्क किया और पूछा कि वित्त मंत्री के फौरन बाद प्रधानमंत्री को खुद अर्थव्यवस्था पर बोलने की क्या जरूरत आन पड़ी।
क्योंकि जो रेट ऑफ ग्रोथ है अर्थव्यवस्था की वो 5.7% पे आ गई है और उस पर एक क्रिटिसिज्म शुरू हो गया है बीजेपी के अंदर से, तो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से एक समस्या है सरकार के सामने। प्रधानमंत्री को लगा कि उनको सामने आना पड़ेगा, हालांकि वित्त मंत्री भी सामने आए थे, उन्होंने भी बात रखी, क्योंकि ये कहा गया है कि जो दो बड़े बड़े डिसीशन है पिछले 9 महीनों के, एक तो जीएसटी और दूसरा नोटबंदी, इन दोनों की वजह से समस्या आई है।
क्या इन आंकड़ों से अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद लगाई जा सकती है?
उन्होंने जो आंकड़े दिए हैं वो आंकड़े सिर्फ संगठित क्षेत्र के आंकड़े हैं। अभी असंगठित क्षेत्र के आंकड़े नोटबंदी के समय क्या हुआ, जीएसटी के समय क्या हुआ, वो तो अभी सामने आए नहीं। और इसीलिए होता क्या है कि जब असंगठित क्षेत्र में इतनी गिरावट आई है तो जो आज की हमारी जो जीडीपी मेजर करने के तरीका है वो सही नहीं होता है। तो मेरा मानना है कि इस समय जीडीपी की जो बढ़त है वो 1% से ज्यादा नहीं है। प्राइवेट जो सर्वेज आए थे नोटबंदी के दौरान, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे था, ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का सर्वे था, पंजाब हरियाणा दिल्ली चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का था, उसमें आया था कि 60-80% की गिरावट थी। अब असंगठित क्षेत्र तो 45% है जीडीपी का, अगर उसमें 60-80% की गिरावट है तो रेट ऑफ ग्रोथ तो बहुत ज्यादा गिरेगा ही।
कहीं ऐसा तो नहीं कि जो अर्थव्यवस्था के हालात हैं वो जितना बताया जा रहा है उससे भी चिंताजनक हैं, इस वजह से प्रधानमंत्री को सामने आकर के जवाब देना पड़ा?
क्योंकि अर्थव्यवस्था जिसमें ने कहा कि अगर 1% की बढ़त पे है और जो हमारा इन्फ्लेशन का आंकड़ा है जो सरकार कह रही है 3-3.5% है, मेरा मानना है उसमें सर्विसेज नहीं आता है और सर्विसेज में ही इन्फ्लेशन सबसे ज्यादा है और इसलिए इन्फ्लेशन का रेट भी मुझे मेरा मानना है कि 6-7% के आसपास है। तो अगर ऐसी बात है तो इन्फ्लेशन ज्यादा है, ग्रोथ कम है और तरह तरह से एजिटेशन चल रहा है समाज में।
मोदी के वादे से बाजार में कोई भरोसा पैदा होगा?
प्रधानमंत्री जब बोलते हैं तो कुछ तो असर होता ही है, लेकिन धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाता है कि असलियत क्या है।
मोदी ने पीएफ में अंशदान देने वाले कर्मचारियों की संख्या वृद्धि का जिक्र किया, मुद्रा बैंक के तहत 4.25 लाख करोड़ रुपए लोन के रूप में देने का जिक्र किया, डायरेक्ट कैश बेनिफिट, यहां तक कि सस्ती एलईडी बांटने की योजना का भी जिक्र किया और कहा कि इससे मध्यवर्ग और निम्न मध्यवर्ग को राहत मिली है। क्या वाकई ऐसा है?
लेकिन ये मैक्रो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये सेक्टरल प्रॉब्लम नहीं है। मैक्रो की जो स्थिति है वो हम सेक्टरल आंकड़े देके उसको जो नहीं बता सकते कि वो सही है गलत है। सरकार में बेचैनी यह है कि बीजेपी के अंदर से जो विद्रोह हो रहा है और ये सिर्फ अरुण शौरी और यशवंत सिन्हा की, और भी बीजेपी में कई लोग हैं जो समझते हैं कि सरकार इतना अच्छा नहीं कर रही है। कई एमपीज ने भी कहा कि हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती, हमको बोलने ही नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हैं कि अंदर से जो हो रहा है वो सरकार के लिए ज्यादा खतरे की घंटी है।
अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार से बात कर रहे थे संदीप राय।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज़ पर।
और अब बात किसानों की, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का अहम हिस्सा कह जाते हैं। हालांकि उनकी हालत पिछले काफी सालों से बद से बदतर होती जा रही है, चाहे सरकार मोदी की हो या उससे पहले मनमोहन सिंह की। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने न सिर्फ लाठियां बरसाई बल्कि उनमें से कुछ को तो पुलिस स्टेशन ले जाकर उनके कपड़े तक उतरवा डाले। टीकमगढ़ के ये किसान जिले को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग कर रहे थे। शुरन्याजी की रिपोर्ट।
टीकमगढ़ में मंगलवार को कांग्रेस के आह्वान पर खेत बचाओ किसान बचाओ आंदोलन का आयोजन किया गया था। इस आंदोलन में बड़ी तादाद में किसान भी मौजूद थे जो अन्य मांगों के साथ ही जिले को सूखाग्रस्त घोषित करवाना चाहते थे, लेकिन आंदोलन उग्र हो गया जिसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज के साथ ही आंसू गैस छोड़ना पड़ा। आंदोलन के बाद लौट रहे किसानों को पुलिस ने रोक लिया और उन्हें थाने लेकर गए, जहां पर पुलिस ने इन किसानों के कपड़े उतरवाए और उनकी जमकर पिटाई की। उसके बाद कांग्रेस के नेता थाने गए और इन किसानों को छुड़वाया गया। कांग्रेस नेता बृजेंद्र सिंह ने बताया,
देखिए किसान जो है बड़े शांतिपूर्वक जो है अपना आंदोलन कर रहे थे और कलेक्ट्रेट के ऊपर जाके जब प्रशासन ने कहा कि आप 10 लोग अंदर आ जाओ तो हम 10 लोग अंदर चले गए। पूरा प्रेस भी साथ में था, कलेक्टर महोदय ने चुकी आते आते नीचे उतरते आधा पौन घंटा लगा दिया और इस बीच में जब ज्ञापन दे के हम लोग वापस लौट रहे थे तो गेट पे ही आ पाए, तब तक एकदम से जो है माहौल खराब हो।
हालांकि स्थानीय प्रशासन ने किसानों के इस आरोप को गलत बताया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों को बताया,
मैंने गृह मंत्री को कहा है वो पूरे मामले को देख रहे हैं, घटना की जांच करेंगे। एक बात मैं साफ कहना चाहता हूँ, सरकार किसानों के साथ है। 10 अक्टूबर तक हमने पूरा राज्य का आकलन करके जो जो क्षेत्र सूखाग्रस्त है और जो जिले सूखाग्रस्त है उनको सूखाग्रस्त घोषित करने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस अनावश्यक रूप से आंदोलन में ऐसी परिस्थितियां पैदा करती है कि पत्थर लाठियां चलें और वातावरण बिगड़े।
टीकमगढ़ जिले में इस साल कम वर्षा हुई है जिसकी वजह से किसान चाहते हैं कि सरकार इसे सूखाग्रस्त घोषित करे। शुरहनियाजी, बीबीसी न्यूज, भोपाल।
आपको याद होगा कि सूबे में जून में हुए किसान आंदोलन में 5 किसान पुलिस की गोली से मारे गए थे। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद को किसान का बेटा बताते हैं। चलते हैं राजस्थान, जहां के जयपुर में भूमि अधिग्रहण को लेकर किसान और सरकार में ठन गई है। किसान अपनी खेती की जमीन नहीं देना चाहते। उनका इल्जाम है कि जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी उनकी जमीन लेकर उसे 1 करोड़ में बेचना चाहती है, जबकि उनके पास खेती के सिवा जीविका का कोई साधन नहीं। जयपुर से नारायण बारेट।
उस धरती पर या तो बस्तियां उगी दिखाई देती थी या दरख्तों के साये में फसलें थी, मगर नींदड़ गांव में गड्ढों से उभरे किसानों के मुंड ही मुंड दिखाई देते हैं, गोया नरमुंड उग आए हों। कोई दो दर्जन किसान तीन दिन से गड्ढों में गहरे समाहित हैं और मुंड बाहर दिखाई देते हैं। वे गांव की जमीन अधिग्रहण करने का विरोध कर रहे हैं। गड्ढे में समाहित बनवारी कहते हैं धरती उनकी माँ है।
हमारी जमीनें जा रही तो जी के क्या करेंगे हम, क्योंकि मातृभूमि माँ के समान होती है, पर हम हमारी मातृभूमि को नहीं देना चाहते। जब तक JDA हमें हमारी इस योजना को निरस्त नहीं कर देगा, जब तक हम यहीं पे बैठे रहेंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, लेकिन हम हमारी एक इंच जमीन नहीं देंगे JDA। हमारे बच्चे भी हैं, हमारी औरतें भी हैं, पिताजी भी हैं, माताजी भी, सभी हम यहीं पे बैठे हुए हैं 2 अक्टूबर से। ये विकास के नाम पे नहीं ले रहा JDA, केवल व्यवसाय करना चाहता है। 1000 करोड़ रुपए की कमाई हो रही है JDA को, इसलिए JDA हमें यहाँ से गुंडागर्दी करके निकालना चाहता है।
सरकारी योजना के मुताबिक 1300 बीघा जमीन अधिग्रहित की जाएगी। गांव के मांगीलाल कहते हैं जान दे देंगे जमीन नहीं।
हमारी सात पुश्तें इसी में पल रही हैं, इसी से कमा के हमारा पेट भरा है, इसी से हम बड़े हुए हैं, यहीं खेले कूदे हैं, पूरे गांव सुख दुख में एक साथ रहा है। और आज हमें कि यहां से आप खाली करो, 7 दिन का नोटिस देते हैं, मकान खाली करो और जाओ यहां से। कोई शरणार्थी है हम यहां पे, कोई आतंकवादी है, ये कौन सा नियम है इस गवर्नमेंट का? बहुत गलत अन्याय हो रहा है हमारे साथ।
भू समाधि सत्याग्रह में शामिल कुछ लोगों को मूर्छा भी आ गई। नींदड़ के बीरबल पूछते हैं क्या वे अपने ही गांव में शरणार्थी हो जाएंगे?
हम लोगों के पास जमीन के अलावा कोई उपाय नहीं है, इसी से हमारे पालन पोषण जो कुछ करना इसी से है, ना किसी की नौकरी है ना कोई पैसा है, जमीन के अलावा हमारे पास कोई साधन नहीं है। और बसी हुई कॉलोनियां, बसी हुई डाणियां उनको तोड़ रहे हैं, बसे हुए लोगों को उजाड़ रहे हैं, नए ला के बसा रहे हैं, तो हम कहां जाएंगे? क्या हम यहां हमारे देश में शरणार्थी हो जाएंगे? हमारे जमीन के अलावा कोई साधन नहीं है।
इस विरोध में महिलाएं भी शामिल है। 80 साल की नाथीबाई से पूछा तो दिल का दर्द जमा पे उतर आया।
बड़ा बेटा तुम्हारे जेठाने को तो 8 मारे थे, 20 पोता थे, 15 पोते थे, जान बंद कर दूं।
मेरा भरा पूरा कुनबा है, इस जमीन से ही गुजर बसर होता था, आखिर हम कहां फरियाद करें? इसीलिए मैं समाधि आंदोलन में शरीक हुई हूं। ये थे नाथीबाई के शब्द। किसानों के हाथों में सामर्थ्य तो बहुत है, मगर धरती के दामन को अपनी बाहों में नहीं समेट सकते। इसी जमीन पर वे हल से रेखाएं खींचते और बीजों को अशरफी की तरह बिखेरते, मगर वे लकीरें अब गड्ढों में बदल गई है। किसान पूछते हैं तरक्की का हर तराना जमीन को क्यों अपने गान में शामिल कर लेता है? शायद हुकूमत इसका जवाब दे। नारायण बारेठ, जयपुर, राजस्थान।
एक के बाद दूसरे सुबह से किसानों की बदहाली की खबरें आती हुई, और अब वक्त हो चला है अखबार आज क्या कर रहे हैं ये देखने का। मेरे साथ विकास त्रिवेदी हैं स्टूडियो में। विकास, ये बताइए कि अखबार क्या कर रहे हैं आज के?
जी फैसल, जो हमारी कार्यक्रम की पहली खबर थी प्रधानमंत्री मोदी का भाषण, वही सारे अखबारों की भी पहली खबर है। और मोदी के भाषण में आलोचकों पर कई तंज किए गए थे, तो अखबारों ने आकर्षक तंज वाले बयानों को ही शीर्षक लगाया है। जैसे जनसत्ता ने लिखा कि रेवड़ियाँ बांटने के बजाय कठिन राह चुनी। इंडियन एक्सप्रेस ने शीर्षक लगाया आलोचक निराशा फैला रहे हैं लेकिन अर्थव्यवस्था सही ट्रैक पर है।
हिंदुस्तान कहा है कि कुछ लोग जब तक आलोचना नहीं करते उनको नींद नहीं आती।
जी हिंदुस्तान टाइम्स ने भी मोदी के बयान को शीर्षक लगाया और लिखता है कि अर्थव्यवस्था पर निराशावाद मत फैलाइए। इसके अलावा बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के महंगाई बढ़ने की आशंका वाली खबर को अखबारों ने पहले पन्ने पर जगह दी, ज्यादातर अखबार ने लिया है।
कल उनकी क्रेडिट पॉलिसी
है। जी जी, तो इंडियन एक्सप्रेस लिखता है विकास दर का अनुमान घटकर 6.7% और इसी के बगल में उन्नी अपने कार्टून में RBI के हवाले से लोगों को अच्छी और सादी दिवाली की शुभकामना देते हैं, तो उन्होंने एक हल्का सा तंज भी कर दिया है इस पर।
अच्छी और सादी।
जी इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के विधानसभा सत्र में दिए भाषण को ज़्यादातर अखबारों ने जगह दी है। अखबार केजरीवाल के उस बयान को लिखता है जिसमें उन्होंने कहा था मैं दिल्ली का CM हूँ, आतंकवादी नहीं, दिल्ली के अधिकारी मेरे सुनते नहीं, मुझसे सरकारी फाइलें छुपाई जा रही हैं।
हाँ, ये पहले भी ये शिकायत उनको हुई है कि हालांकि उनके पास कई डिपार्टमेंट्स हैं लेकिन वो ना किसी की ट्रांसफ़र कर सकते हैं ना किसी के खिलाफ किसी तरह का एक्शन ले।
जी जी जी, दिल्ली की बात चलिए तो हिंदुस्तान टाइम्स में ही खबर है कि आने वाले दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ेगा, इसकी एक वजह पड़ोसी राज्य हरियाणा और पंजाब में फसलों को जलाया जाना है और दूसरा मौसम संबंधी भी है। गुरमीत राम रहीम की करीबी माने जाने वाली हनीप्रीत को 6 दिन के रिमांड पर जो भेजे जाने की खबर जो कल आई थी उसको भी अखबारों ने अपने हिसाब से जगह दी, हिंदी अखबारों ने प्रमुखता से दी है उसको जगह। इसके अलावा अमर उजाला लिखता है मदरसों में भी राष्ट्रगान अनिवार्य होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे पता चले कि मदरसे में पढ़ने वाले छात्रों को राष्ट्रगान पर कोई आपत्ति है।
हाँ, मतलब ये एक बहस है जो कि
जी जी, जी जी जी। इसके अलावा दैनिक भास्कर ने PM मोदी को बड़ा एक्टर कहने वाले अभिनेता प्रकाश राज, जो वांटेड फिल्म में थे और सिंघम में भी थे, उनके खिलाफ लखनऊ में शिकायत दर्ज हुई है, उसको पहले पन्ने पर जगह दी है। उन्होंने कुछ दिन पहले गौरी लंकेश की हत्या पर मोदी की चुप्पी को लेकर निराशा जताई थी और कहा था कि पीएम की बात मुझे निराश करती है कि वो और वो मुझसे भी बड़े एक्टर हैं।
तो हाँ, पीएम के बारे में उन्होंने कहा था कि पीएम जो है मुझसे भी बड़े एक्टर हैं, मैं चाहता हूँ कि अपने नेशनल अवार्ड वापस कर।
जी जी जी
बिल्कुल। बहुत बहुत अखबारों की समीक्षा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विकास आपका। और अब आगे देखते हैं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं की क्या हाल है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में बीआरडी अस्पताल में 72 घंटों के भीतर कम से कम 60 बच्चों की मौत हुई और उसके बाद ये खबर हर तरफ जो है फैल गई और जो सूबे की चरमराई स्वास्थ्य सुविधा है वो अचानक से सुर्खियों में आ गई। यूपी की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं पर बीबीसी ने खास पड़ताल की है, हम कई रिपोर्टें पहले भी सुनवा चुके हैं। आगरा और फर्रुखाबाद के सरकारी अस्पतालों की क्या हालत है उसकी आंखों देखी सुनिए बीबीसी संवाददाता दिलनवाज पाशा से।
फर्रुखाबाद के इसी अस्पताल में ऑक्सीजन की कथित कमी से एक महीने के भीतर 49 बच्चों की मौत हो गई थी। मैं एक ऐसी ही माँ से मिलने पहुंचा जिन्होंने अपना बच्चा इसी अस्पताल में खो दिया था।
मैं सोचा था अपने बच्चे अच्छे सलून डालेंगे, अच्छा पढ़ाए लिखाएंगे, अच्छे रखेंगे, हम चाहे फटे नुचे कपड़ा पहने बच्चे को अपने सही रखेंगे, लेकिन मेरा बच्चा ही नहीं रहा था। मैं कभी नहीं सोचता हूँ कैसे बात हम खाली सोचा, बस मेरे दिल में जाया।
मेरे पास इस माँ के आंसुओं से उठे सवालों का कोई जवाब नहीं था। ये आगरा का ट्रांस यमुना इलाका है जहाँ सड़क किनारे 2 किलोमीटर के दायरे में 75 से ज्यादा निजी अस्पताल हैं। मशरूम की तरह उगाए इन अस्पतालों में इलाज कराने वाले ज्यादातर लोग आसपास के गांव से आते हैं। ऐसे ही एक अस्पताल के बाहर बैठे एक बुजुर्ग से मेरी मुलाकात हुई।
मेरा नाम राम शाह है।
राम शाह जी कहाँ से आए हैं?
बवान से।
कैसे बैठे हैं इधर?
यहाँ बैठे हम, लड़की का है और का उसके बच्चा होना रहो, यहाँ से प्राइवेट आए हैं, क्या करें।
अच्छा, कितना कितना पैसा खर्च हुआ अभी तक आपका?
पैसा है वो कोई 70-75 हज़ार रुपए
खर्च हो गए।
हाँ,
75 हज़ार तो बड़े भारी पड़ गए होंगे।
अरे भारी बात नहीं,
आदमी बचाना तो खेत तो बेचना पड़ेगा, जान बचानी आदमी की।
रामसा की बहू दुर्गेश को एक के बाद एक 3 निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया था जिनका बिल चुकाने के लिए रामसा को अपनी जमीन बेचनी पड़ी। दुर्गेश की माँ मीरा देवी ने मुझे बताया कि अस्पताल ने 15,000 रुपए में डिलीवरी का ठेका लिया था।
आशा लेके आई थी यहाँ पे प्रार्थना हॉस्पिटल में, मैंने भर्ती करवाया उसे अपने आप ही लेके आई सरकारी हॉस्पिटल से खनौली से, और उसने 14,000 का ठेका दिलवाया, यहाँ से डील करा के अपनी भर्ती करा के आशा अपने घर चली गई। नहीं, डॉक्टर साहब ने अच्छी तरह इसका इलाज कोई भी नहीं ट्रीटमेंट किया है, उन्हें कह दिया कि 5 मेरा तो 5 दिन का कोर्स पूरा हो गया।
मैंने जब दुर्गेश का ठेके पर इलाज किए जाने की जानकारी आगरा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी मुकेश कुमार वत्स को दी तो वो अपने दलबल के साथ इन अस्पतालों की जांच करने पहुंच गए।
अगर कोई इमरजेंसी होगी तो कौन देखेगा?
चैतन्य नाम के इस अस्पताल में उन्हें कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला।
इतनी अंधेरी लेकर चल रही है, अरे नहीं लिखा हुआ सर, सीरियस पेशेंट में एक एक दिन में 10-10 जोड़ डालते हैं।
प्रार्थना अस्पताल जहां दुर्गेश का सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था वहां इलाज से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं था। अधिकारियों ने इन दोनों अस्पतालों में मरीज भर्ती करने पर रोक लगा दी, लेकिन आगरा में ये अस्पताल नियमों को ताक पर रखकर कैसे चल रहे हैं? स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता शबी कहते हैं,
इस एरिया में जो CMO आए उन्होंने छापामारी अभियान किया, रात को हॉस्पिटल में सील लगती है, सुबह हॉस्पिटल की सील खुल जाती है। आज आप देख ले एक एक डॉक्टर 20-20 हॉस्पिटलों में अपनी सेवाएं दे रहा है।
आगरा में प्राइवेट अस्पतालों का जायजा लेने के बाद मैं फर्रुखाबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल राम मनोहर लोहिया पहुंचा। रात के करीब 9 बजे जब इमरजेंसी में तैनात एकमात्र डॉक्टर दुर्घटना में घायल मरीजों को देखने में व्यस्त थे तब एक वार्ड बॉय शराब पीकर हंगामा करने लगा। मैं महिला अस्पताल की ओर बढ़ा तो बिजली चली गई। प्रसूता वार्ड में भर्ती संगीता ने अपने लिए बैटरी चलित पंखा लगाया हुआ है।
गर्मी लगती है सर, क्या करूं, परेशान होना पड़ता है, टाके लगे हुए, पसीना आ जाएगा, दिक्कत होगी, तो इसलिए है बिजली रुकती है नहीं, आती जाती है, ऐसे रात भर ड्रामा करती है।
जब मशीन जगह सिकाई वाली
खराब आज कितने दिन के भैया हमें दो दो जाओ जाए दिखाई ना पाओ कहाँ करो जाए।
अभी मैं राम मनोहर लोहिया अस्पताल के ओपीडी में हूं, जहां सैकड़ों लोग लाइन में लगे हैं। करीब 20 लाख की आबादी वाले इस जिले का ये सबसे बड़ा अस्पताल है और यहां रोजाना 2000 मरीज आते हैं। लेकिन क्या इन मरीजों को देखने के लिए डॉक्टर हैं? कमरा नंबर 29 जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ बैठते हैं वो खाली है और उसके बाहर मरीजों की लाइन लगी है
एक्सरे कराने के लिए है। कहने लगे 29-30 नंबर में चली जाओ। अब यहाँ पे डॉक्टर नहीं, 30 नंबर बंद है। हमें तो काफी देर होगी, इतनी देर लाइन में लगे रहे पर्चा बनवाने के लिए, इतनी देर वहाँ लाइन में लगे रहे।
राम मनोहर लोहिया अस्पताल फरुखाबाद की लाइफलाइन भले हो, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की भारी कमी है। इस बारे में अस्पताल के अधीक्षक बीबी पुष्कर कहते हैं,
वैसे तो 29 की डॉक्टर्स की आवश्यकता है, लेकिन हमारे पास इस समय 14 डॉक्टर हैं। जो हमारे स्पेशलिस्ट हैं वो ज़्यादा इधर उधर के कामों में ज़्यादा चली वो एंगेज रहते हैं अपने स्पेशलिटी के साथ साथ। 14 डॉक्टर कहने को तो 14 डॉक्टर हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ओपीडी में वो 4-5 ही डॉक्टर हमारे बैठ पाते हैं।
मेरे मन में सवाल बार बार ज़रूर उठ रहा था कि जब सरकार को पता है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की भारी कमी है, तो फिर इस कमी को दूर क्यों नहीं किया जा रहा है।
दिलनवाज पाशा की जो ये रिपोर्टें हैं उसके वीडियोस और उसकी कहानियां आप बीबीसी हिंदी की वेबसाइट पर देख सकते हैं। आप इसके बारे में अपनी टिप्पणी भी भेजिए। हमारा पता है बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, न्यू दिल्ली 11003, और हमारा ईमेल का एड्रेस है hindi.letters@bbc.co.uk। और अब सुनते हैं खेल समाचार।
नमस्कार, खेल समाचारों के साथ मैं हूँ राखी शर्मा। 6 अक्टूबर से भारत में अंडर 17 फीफा विश्व कप शुरू होने जा रहा है। कोच डी माटोस की अगुवाई में भारतीय टीम इस विश्व कप में मेजबान होते हुए सभी को अपने खेल से प्रभावित करना चाहेगी। भारत पहली बार किसी फीफा टूर्नामेंट का आयोजन कर रहा है। भारतीय टीम को ग्रुप ए में घाना, कोलंबिया और अमेरिका के साथ रखा गया है। फुटबॉल एक्सपर्ट नोवी कपाड़िया से जानते हैं कैसा है भारत का ये ग्रुप।
ग्रुप तो बहुत कठिन है क्योंकि ये फीफा का ड्रॉ है, इसमें कोई मेजबान टीम को कोई फायदा कोई नहीं मिलता है, तो ग्रुप बहुत ही कठिन है। सबसे कठिन बात ये आई है, कई लोगों ने इस पे ध्यान नहीं दिया कि ये जो हमारा मौसम, गर्मी और ह्यूमिडिटी, यूरोप की टीम होती है हमारे विरोध, हमें कुछ फायदा मिल सकता था। यहाँ घाना और कोलंबिया है जो दोनों देशों में, ये इनको तो ये गर्मी कुछ भी नहीं लगेगी।
वहीं चाइना ओपन टेनिस टूर्नामेंट में भारतीय खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना ने क्वार्टर फाइनल में कदम रख दिया है। सानिया मिर्जा ने महिला डबल्स में अपने पार्टनर शुआई पेंग के साथ डेवी शूर्स और एलिस मोर्टेस को 7-5, 6-2 से हराया। रोहन बोपन्ना ने उरुग्वे के अपने साथी खिलाड़ी पाब्लो क्विवेस के साथ मिलकर गोंग माओझिन और झेंग जे को 6-0, 6-4 से मात दी। महिला सिंगल्स में रूसी खिलाड़ी मारिया शारापोवा को तीसरे दौर में रोम की सिमोना हालेप ने बाहर का रास्ता दिखाया। हालेप ने ये मुकाबला 6-2, 6-2 से अपने नाम किया। खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
और कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले एक बार फिर से सुनिए विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार। आर्थिक नीतियों पर पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा समेत विपक्ष की आलोचना झेल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम विरोधियों पर तीखा हमला किया। मोदी ने कहा, कुछ लोगों को निराशा फैलाने की आदत होती है और ऐसे लोगों की पहचान जरूरी है। अमेरिका के लास वेगास में हुई गोलीबारी के बाद इस शहर के दौरे पर गए डोनाल्ड ट्रंप ने घायलों से मुलाकात की। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा, अमरीका पीड़ितों के साथ खड़ा है। कैटलोनिया के राष्ट्रपति कार्लेस पुइगडेमोन ने स्पेन के किंग फिलिप की आलोचना की है। कार्लेस ने कहा, वक्त की मांग है कि इस मसले पर मध्यस्थता की जाए। स्पेन की सरकार ने कार्लेस की मांग को खारिज किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गानी ने बीबीसी से कहा है कि वो तालिबान के साथ एक सतत शांति समझौता करने की तरफ काम करना चाहते हैं और उनकी पूरी रणनीति इस बात पर है कि कैसे इस मसले पर राजनीतिक समाधान की जमीन तैयार की जाए। सऊदी अरब के किंग सलमान रूस की यात्रा पर हैं। सलमान सऊदी अरब के पहले ऐसे शासक हैं जो रूस दौरे पर गए हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन ने उन मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज किया जिसमें उनके जुलाई महीने में इस्तीफे की बात कही जा रही थी। बीबीसी समाचार।
कार्यक्रम का तकनीकी पक्ष संभाला था दीपक जसरोठिया ने। अगली मुलाकात शाम के 7:30 बजे कार्यक्रम दिन भर में। तब तक के लिए फैसल महमूद अली और पूरी टीम को दें इजाज़त। नमस्कार।